सुनो मेरे भाई सुनो, कोई महान जन्म से नहीं कर्म से बने, जन्म से नहीं कर्म से बने।
ओम शांति। आज का टॉपिक है संगम युगी ब्राह्मण बच्चे का कर्तव्य। आप लोग जब हमारे पांडव भवन के मुख्य द्वार पर जाएंगे तो अंदर घुसने नहीं देंगे, वहाँ दोनों तरफ सिक्योरिटी रहता है। तो घर में घुसने के लिए पहले द्वार का परमिशन, जो द्वारपाल है उसका परमिशन लेना पड़ता है। वो लोग सर्वदा जागृत रहते हैं, जागरण में रहते हैं। ब्राह्मण बच्चे को जो बाबा ने 16 श्रृंगार दिया है ना, उसमें पहला श्रृंगार कौन सी है? मस्तक का ताज। उसमें दो ऑप्शन दिया है, ड्यूटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, दायित्व और कर्तव्य। ये दोनों एक ही साथ निभाना पड़ता है, इसलिए ड्यूटी, ऑन ड्यूटी में। तो पहरादार क्या है? ऑन ड्यूटी में रहता है। तो हमारा भी इस ब्राह्मण जीवन जब से शुरू हुआ तब से ऑन ड्यूटी में है। और ड्यूटी छोड़ के कहीं निद्रा के आलस्य का जगह निद्रा आ गया तो सत्यानाश हो जाएगा। उस गेट में जाएंगे दोनों तरफ तो है, उसके ऊपर क्या है? कैमरा भी लगा हुआ है, अटेंशन और चेकिंग के कैमरा सब सर्वदा लगा रहना चाहिए, तब जाके ब्राह्मण जीवन कुछ आगे बढ़ पाएंगे, अंदर घुसने का मौका मिलेगा। तो जब पहले एकदम पहला दिन जब बाबा का परिचय, मैंने ऐसा परिचय नहीं, थोड़ा एक भाई ने थोड़ा परिचय दिया था और लेके गया। वहाँ पहले दिन जब हम सेंटर पर गए, देखा तो एक स्लोगन, छोटा सा बोर्ड है, पवित्र बनो राजयोगी बनो। तो ये ब्राह्मण जीवन जन्म हुआ मतलब ये दोनों सर्टिफिकेट आपको लेना पड़ता है। इस दोनों सर्टिफिकेट बदले ये ब्राह्मण जीवन में कोई फायदा नहीं है। तो ब्राह्मण जीवन का आधार क्या है? पवित्रता। हाँ, पवित्र बनेंगे तब राजयोगी बनेंगे। अगर पवित्रता में कुछ गड़बड़ है तो राजयोगी जीवन चल नहीं सकता। तो पहला इस मुख्य द्वार पर भी ऊपर लिखा हुआ है, बी होली एंड बी राजयोगी, पवित्र बनो राजयोगी बनो। तो हमारे जीवन का पहला जो पवित्रता फाउंडेशन है, इसको जी जान लगा के ब्राह्मण जीवन के अंत तक इसको कायम रखना है। ये जो पहला श्रृंगार है, ताज है ना, मुकुट किरीट बोलते हैं, तो ये कहाँ धारण करते हैं? मस्तक पे। और मस्तक में क्या होता है? बुद्धि, विवेक। चार पांच दिन पहले जो संडे की मुरली था ना, उसमें बुद्धि के लिए बाबा बोला हंस बुद्धि तुम्हारा होना चाहिए। हंस क्या करता है? मोती चुभता है, कंकड़ को फेंक देता है। तो इस दुनिया से भी जो जितना भी असार चीज है, गलत चीज है, उससे हमको निकल के मोती चुगना है, अच्छा चीज को चयन करना है। शास्त्र में है, जलमिश्रित दुग्ध मद्धात असारंग जालंग परित्यज्य सारंग दुग्धं गृह्णाति। अर्थात दूध में पनीर भी होता है, उसमें पानी भी होता है। असार जल पानी को उसके मुंह में कुछ ऐसा चीज होता है, वो लगाने मात्र ही असार जल अलग हो जाता है और सार दूध जो पनीर बोलते हैं उसको ग्रहण कर लेता है। उसी प्रकार मोती और कंकड़ को अलग करता है। तो कौन सी मोती? ज्ञान की मोती, गुण की मोती, बड़ा बाबा ने जो सब हम लोग को दिया है ना श्रृंगार के रूप में, उसमें मोती सब है। एक एक भरसंस बाबा बोलते हैं लाखों रुपये के समान है, बराबर है। ये महावाक्य महावाक्य नहीं है, सारा जीवन को जीने के लिए एक 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 शस्त्र है। इसीलिए उसको धारण करना है। और दुनिया में जो असार चीज़ है, कंकड़ जिसको बोलते हैं, उससे हमें बच के रहना है। काम में तो आता है, लेकिन कंकड़ जब चुभ जाता है किसी के सिर पर लगता है तो, इसीलिए कंकड़ कौन सी है?
व्यर्थ,
कुसंग। इसीलिए शास्त्र में कहा बहुत है, दुर्जन परिहर्तव्यो विद्यालंकृत पिशन मुनिना भूषित सर्प किंग वसौन भयंकर। मैंने सर्प के अंदर मणि तो है लेकिन वो बहुत खतरा भी है, इसीलिए उससे दुर्जन से संभाल के रहना है। तो इसलिए बाबा बोलते हैं कि हियर नो इविल, सी नो इविल, डू नो इविल, थिंक नो इविल। उस दिन हमारे जो श्याम भाई ने क्या बोला, स्मेल नो इविल, वो भी बुरा कर देता है। अंदर गया मने सारे बदबू फैला देते हैं। इसीलिए बाबा के बच्चे सर्वदा होशियार होकर रहना है। एक तो हमारे अज्ञान निद्रा से जागरण होकर रहना है, कंकड़ अलग करके मोती चुगना है, और दुर्जन से संभाल के रहना है। अभी आते हैं आँखें। उस दिन बाबा क्या बोला, तुम्हारे आँखें कैसा होना चाहिए? हंस दृष्टि होना चाहिए। उसमें क्या होता है, हंस दृष्टि क्या करता है? गुणग्राही दृष्टि, आत्मिक दृष्टि, आत्मिक भाव, रूहानी दृष्टि। तो अब शरीर को देखोगे क्या होगा, रसातल में चले जाओगे। आत्मा को देखोगे क्या होगा, तैर जाएंगे, इस भव सागर से पार हो जाएंगे। मतलब आत्मिक दृष्टि होने से क्या होगा, जैसा वसुधैव कुटुंबकम की भावना जागृत होगा, अर्थात आत्मिक दृष्टि जब होगा तब परमात्मा याद आएंगे। एक बाप के बच्चे होने के कारण कोई भेद नहीं होगा। उसमें क्या लिखा है, अयो निज परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम। सारा वसुधा को एक परिवार बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उदार चित्त रहना पड़ेगा। एक बाप के बच्चे बनेंगे, आत्मिक दृष्टि रखेंगे तो भाई भाई होकर रहेंगे। तो हमारा कर्तव्य क्या हुआ, आत्मिक दृष्टि, कल्याण की दृष्टि। भाव क्या होगा, सर्वदा कल्याण की भावना। आज की मुरली में क्या है, बाप कैसा है, मीठा है, कभी भी अकल्याण कर्तव्य नहीं करते हैं। तो बच्चों को क्या करना है, सदा कल्याण की कर्तव्य करते रहना है। उसके बाद जो मुख बोला, तुम्हारा मुख क्या होना चाहिए, हंस मुख। हंस मुख इसका मतलब मीठा बोलना है, व्यर्थ नहीं बोलना, कड़वा नहीं बोलना। हमारे बाबा का पहला कौन सी टाइटल है, वो आते जब है वचन शुरू करते हैं कि मुरली जब स्टार्ट करते हैं क्या बोलते हैं, मीठे बच्चे, और अंत में भी क्या बोलते हैं, मीठे मीठे सिकिला दे बच्चे, बिछड़े हुए बच्चे वो मिल गए, फिर याद प्यार देकर नमस्ते भी करते हैं। तो हमारे मुख का बोल क्या होना चाहिए, एक एक मोती जैसा होना चाहिए, एक एक भर्षण होना चाहिए। पहली बारी जब मधुबन आए हैं, आए थे, तब सौगात देने के साथ साथ एक थैला दिया था, उसमें तीन महावाक्य लिखा था, बोरी का बैग, उसमें प्रिंट किया हुआ डिजाइन बहुत अच्छा, मीठे बोलो कम बोलो धीरे बोलो। तो ब्राह्मण जीवन में क्या करना चाहिए, एक दूसरे से जब बात करते हैं पहला हमारे मुख से कौन सी बोल निकलते हैं, ओम शांति। दीदी मनमोहिनी जब बात करते थे कैसे उसका मीठा बोल, बोलो ओम शांति। इस मधुर बोल से क्या होगा, सबको अपना बना सकते हैं। अब देखेंगे एक हिस्ट्री का ये सुनाता हूँ। जब बाबा तो ये हमारे संचालिका का रूप में पहले मामा को सिलेक्ट किया था, मुकरर किया था, वो बाबा है तो माँ भी चाहिए। लेकिन मम्मा हर कार्य किसको पूछ के करती थी, दीदी से, क्योंकि दीदी अनुभवी थी, शादीशुदा थी ना, संसार का भी अनुभव है, कैसे ट्रगल करना सब अनुभव है। इसीलिए दीदी से राय लेके हर कार्य दीदी जी, मम्मा बोलती थी आपके इसमें क्या राय है, दीदी जब बोलती थी हाँ तब आगे बढ़ती थी। अभी देखो मामा 1965 में अव्यक्त जब हो गए, उसके बाद यज्ञ का संचालन कार्य किसके हाथ में दिया, दीदी के हाथ में। दीदी के तीक्ष्ण बुद्धि होने के कारण, जैसे ये बोला ना हंस बुद्धि, तो परखने की शक्ति दीदी के बहुत थी, किसको भी देखते हैं तो परख लेती थी, और परखने के बाद जो कार्य करना है वो तो सुचारू रूप में हो जाता था। जब विदेशी आते थे तब क्या कहते थे, हम इंग्लिश में बुद्धू तुम हिंदी में बुद्धू, भाषा का भेदभाव खत्म। तो दृष्टि देते थे, रूहानी दृष्टि, हंस दृष्टि, उसमें एक आंख में मुक्ति एक आंख में जीवन मुक्ति का सभी साक्षात्कार करते थे और सब बाबा के बन जाते थे। दूसरी बात, परखने की शक्ति के साथ जो निर्णय शक्ति है ना, देखो 1983 में जब दीदी अव्यक्त हो गए, नहीं मामा, हाँ दीदी 28 जुलाई 1883 में अव्यक्त हुआ ना, तो नहीं एक बात कह रहा हूँ, जब मामा अव्यक्त हुए तब सोचा था ये यज्ञ का संचालन किसके हाथ में दे, क्योंकि दीदी तो संचालिका थी। तब बाबा ने दादी को, ये तो बाबा जब अव्यक्त हुए, दीदी के हाथ में तो थी, बाबा जब अव्यक्त हुए सबका प्रश्न है अभी ये संचालन कार्य किसके हाथ में थे। तब ओम शांति भवन में जब बाबा आए तब ये सीन हुआ, लेकिन बाबा अव्यक्त होने के 3-4 महीना पहले दीदी जी को दिल्ली सेवा अर्थ जाना हुआ, और दीदी के साथ कौन थे, हमारे ये जयंती बहन, वो दिल्ली इलाहाबाद यूपी बहुत जगह घूम के जब यहाँ 18 जनवरी में बाबा का अव्यक्त हो गया बाबा ने, तब उस टाइम तो फोन आदि ज़्यादा नहीं थे, तो दीदी को आने में एकदम 21 तारीख को हुआ। तो 21 तारीख को संस्कार पूरा होने के बाद बाबा जब अव्यक्त बाप दादा का अवतरण हुआ, तब उन्होंने भोग के थाली के ऊपर जो फूल रखते हैं ना, उसमें 2 फूल लिया, एक फूल दीदी के मस्तक पर और एक फूल दादी के मस्तक पर रख दिया, और सभा को, सारे सभा को पूछ लिया आप सबका पसंद है, तो सभी ने एक हाथ की ताली बजाई। तो आप देखो जो परख शक्ति और निर्णय शक्ति का जोड़ी, ये दोनों हमारे यज्ञ के सुचारू रूप से चलाया। बाबा अव्यक्त होने के बाद 14 साल, 1983 साल बोला ना, ये 14 साल तक एक ही गद्दी में दोनों बैठ के चलाया। हंस का जोड़ी बोला है ना, ये हंस बुद्धि बाबा उस टाइम एक किया, ये एक का है परख शक्ति, एक का है निर्णय शक्ति, दोनों मिला के हमारे यज्ञ को एकदम दिन दोगुनी रात चौगुनी जो बोलते हैं उसी अनुसार यज्ञ को बढ़ाया। जब 1983 साल में हमारे यहाँ कॉन्फ्रेंस हुआ ना, विश्व शांति कॉन्फ्रेंस, तब उसके बाद दीदी ने शरीर छोड़ा। तो निर्णय शक्ति और परख शक्ति दोनों मिलके काज करेंगे तो काम क्या होगा, बहुत बेहतर होता रहेगा। अभी आप देखेंगे उसके बाद जो हमारा मुख का बोल क्या कैसा होना चाहिए था, बोला मीठा। जो थैली में हमने देखा था कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, तो कम बोल बोलने से क्या होगा, हाँ हमारे अंदर जो आंतरिक शक्ति है, एनर्जी है, ताकत है, विल पावर है, वो धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। जो भी आप बोलेंगे वो महावाक्य जैसा बन जाएगा, साधारण बोल नहीं होगा। इसीलिए बाबा कहते हैं साधारणता से भी आपको ऊपर उठना है। ये टॉपिक जब दिया ना, तब हमारे सुशील भाई ने एक श्लोक उच्चारण किया था, पता नहीं उसके मन में क्या भाव था। वो श्लोक है गीता का पहला श्लोक, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता जुजुत्सव मामका पांडवाश्चैव किं कुर्वत संजय। उसमें पता नहीं फिर मेरे को क्लिक हुआ, ये धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र क्या है। मैं तो महाभारत के सीन में नहीं जाता हूँ, आता हूँ हमारा ब्राह्मण जीवन में। जब ज्ञान प्राप्त हुआ तब मेरे को लगा यही बाबा का सत्य बाप ने सत्य परिचय दिया, आत्मा का परिचय दिया, परमात्मा का परिचय दिया, तब ये शरीर क्या हुआ, धर्म क्षेत्र हो गया। उसके पहले क्या था, कुरुक्षेत्र, लड़ाई झगड़ा मार पीट दंत सब कुछ चलता है। जब ज्ञान प्राप्त हुआ तब दोनों एक साथ युद्ध करने लगा। बाबा भी बोलते हैं जब ज्ञान प्राप्त होता है तब अंदर का जो विकार है ना वो उछलता है। पहले होम्योपैथी डोज देते हैं ना, सारे सब अंदर का बीमारी बाहर निकलते हैं। तो ये कुरुक्षेत्र में लड़ाई शुरू हो गया। और ये कुरुक्षेत्र में कौन है, वो बोल रहे कि मामका पांडवाश्चैव किं कुर्वत संजय। मामका मतलब मेरे पुत्र और पांडव ये युद्ध क्षेत्र में क्या कर रहे हैं, ये संजय तुम जाके देखो। इसका अर्थ ये हुआ है क्योंकि 63 जन्म हम इस शरीर को अपना मान लिया और ये मानते 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 क्या हो गया, हम अपने को शरीर समझकर बैठे हैं। तो बाबा जो ज्ञान दिया है उसको कभी कभी विस्मृति होने के कारण अपना जो शुद्ध बुद्ध भूल जाते हैं। इसीलिए संजय को जो बाबा ने दिव्य दृष्टि दिया है उसको संजय के नाम पर उसको पूछ रहे हैं, क्योंकि धृतराष्ट्र अंध हो गया। बाबा ने जो संगमयुग में ज्ञान दिया है ये तो द्वापर से हमारा बंद हो गया आँखें, अभी ये आँखें बंद हो गया, इसलिए जब पूछ रहे संजय को जाके देखो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र युद्ध के मैदान में क्या हो रहे हैं। उन्होंने क्या बोलते हैं, दृष्ट्वा तु पांडव अनेकंग बुढ़ंग दुर्ज धनस्तदा आचार्य उपसंगम राजन वचनम। दुर्योधन उधर एक पक्ष है, इधर पांडव पक्ष है, उभय एकदम रणसंगम में खड़ा हुआ है। यहाँ भी एक तरफ हमारा ज्ञान, एक तरफ जो अज्ञान है, दोनों का द्वंद्व चल रहे हैं। उसमें दिखा था कौरव और पांडव। पांडव कौन है? पांडव संख्या बहुत 5 थोड़े दिखाया, और कौरव उसमें 100 पुत्र है। हमारे यहाँ बाबा बताते हैं काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, काम क्रोध एक एक का भी 100 पुत्र है। काम का देखो कितना है, लोभ लालसा देखना दृष्टि कुछ भी हो उसमें हो जाता है, लोभ में भी मोह अहंकार। इसीलिए बाबा कहते हैं कि स्वधर्म में निधन श्रेय पर अधर्म भयावह। बाबा जो बोलते हैं अपने स्वधर्म में टिको, पर धर्म में कभी भी नहीं जाने का, वो उसका रंग चकाचौंध बहुत होता है। यहाँ स्वधर्म में अगर मृत्यु भी हो जाए ये श्रेय मान लो। स्वधर्म क्या है हमारा? जो ब्राह्मण धर्म का कर्तव्य है सुख शांति पवित्रता ज्ञान गुण शक्ति आनंद प्रेम एक तरफ, तो स्वधर्म में टिकना ये है ब्राह्मण जीवन का कर्तव्य। और परधर्म जहाँ लोभ है काम है क्रोध है अहंकार है उसमें जाएंगे तो मरना ही पड़ता है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि अगर कोई 5 मंजिल से गिरता है तो चकनाचूर हो जाता है। चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर। अगर ये ज्ञान गुण शक्ति सुख शांति पवित्रता के एकदम शिखर पर आप चढ़ जाएंगे तो आपका क्या होगा? बहुत मीठा रस मिलेगा। हर दिन बाबा ज्ञान अमृत पिलाते हैं ना, जो पढ़ाई, तो जब तक जीना है तब तक ज्ञान अमृत पीते रहना है। तो पढ़ाई हमारा ये अमृत के बराबर है, हमारे जीवन को एकदम मूर्छित को सुरजित कर देते हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं स्वधर्म में टिको। स्वधर्म अर्थात ये ज्ञान गुण शक्ति सुख शांति पवित्रता, इसको जी जान लगा के पालन करते चलो। और जो परधर्म है उसको किनारा करो। तो पहले क्या बोला था? कुसंग से अपने आप को बचाना है। इसीलिए बाबा कहते हैं हियर नो एविल सी नो एविल टॉक नो एविल डू नो एविल थिंक नो एविल। उसके परिवर्तन में क्या करना है? अच्छा देखो अच्छा सुनो। बाबा जो कहते हैं कान का कुंडल दिया है किस लिए? बाबा जो कहता है वही सुनो और उसी का बात मुख से दूसरे को सुनाना। बाबा का परिचय देकर दूसरे को वर्षे के अधिकारी बनाना है। कैसे परिचय देंगे? एक तो मुख से जितना हो चाहे, तीसरा बाबा जो प्रदर्शनी हमारा सेट बनाया चित्र सेट बनाया अभी तो कितना 20 हमारे विंग्स है, हर एक का अलग अलग तरीके से समझाते हैं, कैसे भी जी जान लगा के कर रहे हैं ना। प्रदर्शनी के द्वारा बाबा का परिचय दो, कोई भी आत्मा वंचित नहीं रह जाए, उलाना ना देवे लास्ट तक। तो ये कार्य जो बाबा दिया है और कौन सी है? गीता का भगवान सिद्ध करके बताओ। तो हमारे बहुत सारे विंग्स है, उन्होंने जी जान लगा के उसमें कदम आगे बढ़ रहे हैं। और बाबा का परिचय कैसे दें? बाबा बोलते हैं एरोप्लेन से परिचय गिराओ। और कैसे? जितना भी मीडिया है उसका, बाबा बोलते ये सब साधन ये ब्राह्मण के कार्य के लिए बनाया, बाबा ने टचिंग दिया है। और ये सारे मीडिया का जो साधन है फेसबुक ट्विटर है जो व्हाट्सएप आदि आदि है, अभी यहाँ तो हम लोग कितने थोड़ी है गिनती में 8-10 है, लेकिन ये जो साधन है इसके द्वारा सारा विश्व के आदमी ये सुन रहे हैं। अभी अब देखो तो बाबा ने ये जो कर्तव्य दिया है, ये जो बाबा ने साधन दिया है ये ब्राह्मण बच्चों के लिए, तो ब्राह्मण बच्चों का जो कर्तव्य है बाबा का परिचय जन जन तक पहुंचाना है। अभी लॉकडाउन में देखो सेंटर में जा नहीं पाते हैं, और हर बच्चे क्या कर रहे हैं? ये हर घर को आश्रम बना दिया, हर घर में जहाँ भी ब्राह्मण बच्चे हैं मुरली बिगड़ तो उसको प्राण नहीं जीते हैं, बाबा का मुरली पढ़ रहे हैं, बाबा का परिचय एक दूसरे को मीडिया का जो साधन है उसके साथ प्रेरित कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। यहाँ कोई एक जो जूम होता है आदि आदि होता है उसमें साथ वो हमारे क्लासेस चलता है, पहले पहले तो एक क्लास नहीं मिलता था, अभी दिन में 4-5 क्लास मिल जाता है बड़े बड़े महारथी का। तो ये भी जो कर्तव्य है, माने ब्राह्मण बच्चे बैठे नहीं हैं। अभी ये हमने जो महाभारत का सीन उल्लेख किया था उसमें आप देखो पांडव का जो अर्थ बाबा ने बताया, जो 5 पांडव है, पहला पांडव कौन? युधिष्ठिर, जो युद्ध में स्थिर रहता है, उसमें कोई द्वंद नहीं चलता है, सब ठीक है, बाबा का कार्य चल रहा है। संसार में कितना हलचल है, संसार दुखी है, बाबा का बच्चे बाबा बैठा है, कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं है। दूसरा पांडव कौन है? भीम, हाथ में क्या है? गदा। बाबा बोलते हैं तुम्हारे बुद्धि ज्ञान की गदा है, उसमें आप मस्ती रहो, कोई माया आ नहीं सकता है। तीसरा पांडव कौन है? अर्जुन। कौन है? लक्ष्य को सिद्ध करता है। तो हर ब्राह्मण बच्चे का लक्ष्य क्या है? बाप समान बनना है, लक्ष्मी नारायण तख्त नृसिंह बनना है। तो बाबा ने हर बच्चे को अर्थ सहित बताया। एक चौथा नंबर नकुल, वो क्या बोला था, जो कोई जो खराब संग है ना, कोई कुल में नहीं, एक ब्राह्मण कुल, और सहदेव सहयोग का हाथ जो सर्वदा देते रहे। कौरव पक्ष में देखो दुर्योधन, वो कौन है? हमारे जो ज्ञान की जो धन को जो व्यर्थ में यूज करता है, बोलना नहीं चाहिए था, क्योंकि कोई कोई बाबा के बच्चे को देखो मधुबन तक आने के लिए मना कर देते हैं, क्योंकि वो व्यर्थ में वो हमारे ज्ञान धन को मिसयूज करता है। उसका ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करता हूँ। दुशासन क्या करता है? ज्ञान में आते हैं उसका भी दुरुपयोग करता है, कुदृष्टि जाता है, चीरहरण करता है, ज्ञान का दुरुपयोग करता है। तो उसी प्रकार द्रौपदी, उसमें लिखा है सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। उन्होंने एक को सहारा छोड़ के अपना जो 5 पांडव पति के रूप में मिला था उसको सहारा सोच रहे थे, जो गुरुदेव है कुलाचार्य है उसको सहयोगी सोच रहे थे, लास्ट में सभी जब निरुपाय हो गया, हाथ उठा के दो हाथ समर्पण करके जब किया, ऊपर से पर्वत प्रमाण वस्त्र आके उसका लज्जा निवारण किया है। तो इस ज्ञान यज्ञ में भी बाबा जिसको बोलते हैं संपूर्ण सरेंडर, समर्पित बुद्धि, भले गृहस्थी में रहते हैं, बाबा क्यों, ये महारथी के आदि आदि आँखों में जो है वो बाबा के आँख में नहीं, बाबा का आँख में दूसरा है, जो पेट को बांध के मुट्ठी भर चावल दे के यज्ञ को संभालते हैं, बाबा उनको पदम गुना रिटर्न देते हैं। उस टाइम क्या होता था, जैसा हमारे बेकरी पार चलता था, खाने के लिए भी हमारे अन्नदाना नहीं था, लेकिन किसी ने मनी ऑर्डर कर दिया उसी जमाने में 500 रुपया, अभी तो कितना लाख रुपये के बराबर होगा। बाबा ने क्या बोला था, इसका रिटर्न भी बाबा भरेगा। इसीलिए हर ब्राह्मण बच्चे का कर्तव्य क्या है, यज्ञ रक्षा करना है। जितना हम यज्ञ रक्षक बनकर आधारशिला बनेंगे, हमें देख दूसरा फॉलो करेंगे। तो हमारा हर कर्तव्य कैसा होना चाहिए? यज्ञ का जो नियम है बाबा ने उसमें श्रीमद दिया है, श्रीमद के आधार से करेंगे तो हमारा हर कार्य में हम सक्सेसफुल होंगे। हमारा बाबा बोलते हैं यहाँ कोई गुप्त नहीं रहता है। अब देखेंगे हमारे जो ये ब्राह्मण जीवन है ना, इसको भेंट करने के लिए बाबा ने एक विराट रूप का चित्र सामने खड़ा कर देते हैं। उसमें दिखाते हैं मुख में देवता निकलते हैं, बभुजा से क्षत्रिय निकलते हैं, और जो पेट उदर है वैश्य, और नीचे हमारे जो टांग है वहाँ शूद्र निकलते हैं। इसलिए ब्राह्म ऊपर जो चोटी है वो दिखाया नहीं। बाबा इसको संशोधन करके बताया, जे जब सतयुग में देवी देवता जन्म होंगे उसका कर्म क्या होगा, प्लस माइनस उसमें नहीं होता है। उसमें ना विकर्म होता है ना श्रेष्ठ कर्म होता है, उसको अकर्म के रूप में बताया। लास्ट में जब क्षत्रिय तक है दो कला कम होता है, उसको भी बाबा इतना छेड़छाड़ नहीं किया है, लेकिन जब नीचे आया वैश्य और शूद्र उसमें हमारे विकर्मा बनता है। अभी बाबा आके जब ज्ञान दिया जो चोटी है उसमें बाबा कर्म अकर्म विकर्म का राज बताया। श्रेष्ठ कर्म क्या है, विकर्म क्या है, अकर्म क्या है। अब पांडव भवन के जो मेडिटेशन हॉल है ना, उसमें आप चले जाएंगे, पहला एक चित्र है उसमें आप देखेंगे क्या है। उसमें एक तरफ एक शरीर है, एक तरफ एक मकान है। एक शरीर का मालिक को आत्मा दिखाया और मकान का एक मालिक है। आत्मा जैसे कर्म करता है उस कर्म के अनुसार उसका फल के रूप में तीन चार आदमी को दिखाया। आत्मा जब महत कार्य करते हैं, महान कार्य करते हैं, उसमें एक महात्मा को दिखाया। आत्मा जब पुण्य कार्य करते हैं, एक पुण्य आत्मा बुद्ध के रूप में दिखाया। आत्मा जब श्रेष्ठ देवतुल्य कार्य करते हैं, एक देव आत्मा को दिखाया। आत्मा जब निकृष्ट कार्य माने ये पुण्य कार्य महत कार्य और श्रेष्ठ देव कार्य छोड़ के जो गलत कार्य करते हैं उसको पाप आत्मा के रूप में दिखाया। तो ब्राह्मण जीवन का कर्तव्य क्या है? ये जो पाप कर्म है बाबा, जो नेगेटिव नो इविल सी नो इविल डू नो इविल, ये छोड़ के जो अच्छा कार्य है उसको करने के लिए बोला है। क्योंकि अभी बाबा क्या है, बीज रूप। आत्मा भी क्या है, मनुष्य का बीज है। तो ये बीज में जो होता है वो तो शरीर में फल होगा। भविष्य जन्म हमारा क्या होगा, देवता ही जन्म। तो वहाँ देवता सबको सुख देता है, इसीलिए सुखदायी कर्म करने के लिए बाबा अभी हमारे टास्क दिया है, ये कर्तव्य दिया है, यही कार्य करो। अपने आप को आत्मा सोचो। अभी तो हम लोग सोचा है ये शरीर में आत्मा है, अभी मुझे सोचना क्या है, आत्मा में शरीर है। क्योंकि एक बीज में एक वृक्ष का पूर्ण रूप उसमें होता है, तो आत्मा में इस शरीर है, ये जो आप हम सोच लेंगे तब आत्मा का सारे कर्तव्य सामने प्रत्यक्ष होंगे। क्योंकि बीज में सब डाल रहे हैं, बीज को संशोधन कर रहे हैं अभी बाबा आत्मा। इसीलिए बोला है आत्मज्ञान प्रदानेन तस्मै श्री गुरवे नमः, स्वधर्मे निधनं श्रेय परधर्म भयम्। ये स्वधर्म जो बाबा ने अभी कूट कूट के भर दिया, तो इसमें हमें रहना है, इसका स्मरण करना है, और बाबा का परिचय एक दूसरे को देना है। बाबा जैसा शक्तिशाली समर्थवान है सबको समर्थ बनाना है, ये है हमारा संगम का कर्तव्य। ओम शांति।
मेरे भाई सुनो, कोई महान जन्म से नहीं कर्म से बने, जन्म से नहीं कर्म से बने, तकदीर की लंबी लकी, तकदीर की लंबी लकी, जन्म से नहीं कर्म से बने, कलम से नहीं कर्म से बने, धर्म से नहीं कर्म से बने, भरम से नहीं कर्म से बने।